તારીખ 30/5/1993 શ્રી મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશકના ચોથા અધિકાર ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન. સળંગ પ્રવચન નંબર 49.
શ્રી મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશક ચોથા અધિકાર. અનંત સંસાર કે કારણભૂત એસે મિથ્યા દર્શન, મિથ્યા જ્ઞાન और मिथ्या चारित्र का स्वरूप क्या है, इसका प्रकरण चलता है. जिसको अधर्म कहते हैं, जगत में पाप को अधर्म कहते हैं, पुण्य को धर्म कहते हैं. वितराग दर्शन में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को अधर्म कहते हैं और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धर्म कहते हैं. जगत के और वितराग की मान्यता में ये बड़ा अंतर है. यहाँ जो प्रकरण चलता है वो मिथ्या दर्शन का स्वरूप कैसा है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के रचयिता पंडित प्रवर श्री टोडरमल जी बहुत तगड़ा क्षेपक्षम वाले थे. इस अधिकार में उन्होंने ये निरूपण किया कि मिथ्या दर्शन होने में ज्ञान का जो क्षोभक्षम है, जिसको उघाड़ कहते हैं चालू भाषा में, वो उघाड़ ज्यादा होवे या कम होवे उस पर कोई मिथ्या दर्शन का आधार नहीं है. मिथ्या दर्शन का आधार अवश्य ऐसा है कि यथार्थ ज्ञान होवे तो मिथ्या दर्शन का अभाव होकर के सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, और ज्ञान अयथार्थ होवे तो मिथ्या दर्शन है वो अनादि का है, वो ऐसा का ऐसा रहेगा. चालू यथार्थ ज्ञान और अयथार्थ ज्ञान के प्रकरण में मूल बात क्या है अथवा मुख्य बात क्या है कि प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत विषय को अच्छी तरह समझना. मेरे आत्मकल्याण में प्रयोजनभूत बात कौन सी है और अप्रयोजनभूत बात कौन सी है, ये खास बात है. इसमें प्रयोजन मैंने कि आत्म कल्याण को हो या आत्म शांति को हो या आत्मिक सुख को हो, इसी को यहाँ प्रयोजन कहते हैं. यहाँ प्रयोजन कोई सांसारिक कार्य का प्रयोजन की बात नहीं चल रही है कि अनुकूलता मिले वो प्रयोजन है, पैसा मिले वो प्रयोजन है, स्वर्ग मिले वो प्रयोजन है, कोई बाहर में अनुकूल संयोग मिले वो प्रयोजन है, ऐसी कोई बात इधर नहीं लेना है. तो ये प्रकरण चालू करेंगे पंडित जी साहब. यहाँ कोई पूछे, प्रश्न उठाया है कि प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत पदार्थ कौन है. क्या प्रश्न उठाया कि आपने ये कहा कि प्रयोजन भूत है, उस पर ज्यादा ध्यान देना और अपनी समझ को, ज्ञान को ठीक कर लेना, और अप्रयोजन भूत बात होवे उनको छोड़ देना. शास्त्र तो समुद्र जैसी बात है, बहुत सी बात है, अनेक प्रकार के दूषित प्राणियों को, भव रोग के अनेक प्रकार के चित्र विचित्र योग्यता वाले जीव को उपदेश अनेक प्रकार से दिया है. तो शास्त्र पढ़ने वाले को तो यही कहा कि तेरे काम की बात होवे वो तेरे लिए प्रयोजन है, तेरी भूल का सुधार हुए वही तेरे प्रयोजन भूत है, दूसरे की भूल का सुधार बिगाड़ के साथ तेरे प्रयोजन नहीं है, तेरा कोई प्रयोजन इसमें नहीं है. ऐसी बात यहाँ से लेना है। नियम सार में तो वहां तक लिया है कि मुनिराज है जो सिद्धात्मा थे ना, इसके लिए बात किया है कि पहले तो वो संसारी थे, वो संसार के दुख से थक गए, जब संसार के दुख से थके तब उनको वैराग्य हुआ और वैराग्य होकर के वो सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करके मुनि दशा में आए। तो मुनि दशा में भी उनको जो बोध प्राप्त हुआ वो अपने गुरु की उसमें प्रसाद है, गुरु का प्रसाद लिया है। प्राप्त उपदेश कैसा लिया है शास्त्र का? गुरु का प्रसाद लिया है। इसमें मुनि दशा में इतना भी नहीं करते गुरु का। जो कोई अति आसन्न भव्य जीव हुए, कौन सिद्ध कौन हुए हैं कि जो कोई अति आसन्न भव्य जीव हुए वे पूर्व में संसार अवस्था में संसार के क्लेश से थका हुआ चित्त बाला होता हुआ संसार के क्लेश से थक गए थे बिल्कुल। ऐसा जिसका चित्त हुआ था, अभी जिसको संसार में उत्साह है, अपनी आशा और आकांक्षाओं की पूर्ति करनी है और इसके लिए जो जोर से परिणाम करते हैं वो आसन भव्य नहीं है। क्या वो आसन भव्य नहीं है? संसार अवस्था में संसार क्लेश से थके हुए चित्त वाले हुए थे, वो सहज वैराग्य परायण होने से, इसी कारण से वो वैराग्य परायण होने से द्रव्य भाव लिंग को धारण करके, सिर्फ द्रविलिंग धारण नहीं किया, द्रविलिंग भी धारण किया और भावलिंग भी धारण किया, और अकेला भावलिंग हुआ और द्रविलिंग नहीं आया वो भी नहीं, दोनों साथ में होता है यथार्थ में। तो उसको धारण करके परम गुरु के प्रसाद से इधर लिया, परम गुरु के प्रसाद से प्राप्त किया हुआ परमागम का अभ्यास। मुनिराज को भी परमागम का अभ्यास किससे प्राप्त हुआ? परम गुरु के प्रसाद से। और हम तो यही कहेंगे कि हम तो हमारा क्षोभ संशय हमारा पुरुषार्थ से जानते हैं, मुनिराज मुनि दशा में वो बात है, परम गुरु के प्रसाद से प्राप्त किया हुआ परमागम का अभ्यास। सीधा अभ्यास हमने नहीं किया ऐसा कहते हैं सीधा अभ्यास नहीं किया, आगम का अभ्यास गुरु के सानिध्य में, गुरु के चरण शरण में जा करके हमने किया है, ऐसा सीधा अभ्यास हमने नहीं किया है। बहुत गहन चीज है ना आगम, तो बहुत गहन चीज है। ऐसा अभ्यास के द्वारा सिद्ध क्षेत्र को और अव्याबाध दशा को प्राप्त किया, ऐसे सिद्ध दशा का वर्णन में वो बीच में श्री गुरु का प्रसाद आगम अभ्यास में डाला है। आगम की बात ऐसी है, परम गुरु ना प्रसाद बड़े गुरु परंपरा, हमारा हमारे गुरु आत्मा में निमग्न थे ऐसे हमारे गुरु ने कृपा किया। महान आचार्य होते हुए भी वो अपने गुरु का स्मरण भूलते नहीं है, अपने गुरु को भूलते नहीं है, ऐसी बात है। लौकिक में थोड़ा उपकार करे तो भी सज्जन आदमी उसका उपकार भूलते नहीं है, और ये लोकोत्तर उपकार हुए और उसको भूले, ये बात तो धर्म के मार्ग में हो सकती नहीं है। क्या कहते हैं इधर कि प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत कौन है, कौन कौन पदार्थ से प्रयोजन भूत है, कौन के कौन से पदार्थ अप्रयोजन भूत है। शास्त्र में तो बहुत सी बातें हैं, उसका समाधान देते हैं कि इस जीव को प्रयोजन तो एक यही है कि दुख न हो और सुख हो। इस जीव को, मैंने सभी जीव को, जीव मात्र को यही प्रयोजन है कि उनको दुख नहीं होवे और सुख होवे। दुख और सुख साथ में तो नहीं, सुख है वो दुख नहीं, दुख है वो सुख नहीं, यही प्रयोजन है सभी जीव को। किसी जीव के अन्य कुछ भी प्रयोजन नहीं है, कोई भी जीव को सुख के अलावा कुछ प्रयोजन नहीं है। संसार के कोई भी कार्य में, किसी भी प्रकार के कार्य में प्रयोजन तो सुख का रहता है। खाना है तो सुखी होने के लिए, और खाना खाने का बंद करना है तो सुखी होने के लिए, पैसा कमाना है तो सुखी होने के लिए, और शाम को दुकान को ताला लगाना है तो भी सुखी होने के लिए। प्रयोजन तो सुख का सभी जीव को होता है, वो तो अपना परिणाम को तलाश करे, अपने परिणाम की खोज करे तो पता चल जाएगा कि कहने वाला ने बहुत अनुभव पूर्ण बात की है। तथा दुख का न होना और सुख का होना वो एक ही बात है, कहने में अस्ति नास्ति दो बाजू से कहने में आती है, लेकिन बात तो एक ही है कि दुख का न होना और सुख का होना, यही एक ही बात है। क्योंकि दुख का अभाव वही सुख है। देखिए इसमें क्या गर्भित बात लिया कि हमारे मुमुक्षु कोई प्रश्न करते हैं कि हमने तो आत्मिक सुख को जाना नहीं, इसलिए हमको आत्मिक सुख की आत्म शांति का आकर्षण कैसे होवे। तो कहते हैं कि तुझे वर्तमान में दुख लगता है क्या, और इस दुख का अभाव तू करना चाहता है क्या, बस वही सुख है। जैसे कोई कहे कि भाई हमारा ध्येय है, हमने तो कभी ध्येय को समझे नहीं कि पूर्ण निर्दोषता कैसी होती है, लेकिन दोष तो तुम समझते हो कि नहीं समझते। ये दोष का अभाव, उसी का नाम निर्दोषता है। ऐसे दुख और दोष अविनाभावी है, जो परिणाम में दोष है वो आकुलता में दुख के परिणाम है, जो परिणाम पवित्र है वो निराकुल सुख के परिणाम होते हैं। क्योंकि दुख का अभाव वही सुख है, और इस प्रयोजन की सिद्धि, दुख का अभाव करने के प्रयोजन की सिद्धि, भले तुम्हें सुख में अस्तित्व को नहीं पहचाना हो, नहीं जाना हो, नहीं अनुभव किया हो, लेकिन दुख का अभाव तो चाहता है कि नहीं चाहता है। इस प्रयोजन की सिद्धि जीवादि का सत्य श्रद्धान करने से होती है। सुख कहाँ है, आत्मा में है या आत्मा से बाहर है, बस उसमें नौ तत्वों की बात आती है। जीव आदि, आदि में नौ ले लेना, नौ नौ लेना, वो इस नौ पर नौ का प्रयोजन है। प्रयोजन की सिद्धि जीवादि का सतत ध्यान करने से होती है। कैसे, सो कहते हैं। अब एक कैसे जीवादिक नव तत्व का श्रद्धान करने से कैसे सुख प्राप्ति की और दुख के अभाव का प्रयोजन सिद्ध होता है, उसी का वर्णन करेंगे इधर। प्रथम तो दुख दूर करने में अपना और पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, ऐसा अपना आत्मा का आत्मज्ञान किए बिना और मेरे से मेरे अलावा दूसरे कौन कौन कैसे पदार्थ हैं, मेरे और उनके बीच में कैसा सद्भाव या अभाव है कि नहीं है, उसका यथार्थ ज्ञान पहले करना चाहिए। देखो वेद ज्ञान का विषय प्रारंभ कर दिया, नव तत्व की बात करने में शुरू में ही वेद ज्ञान का विषय प्रतिपादन किया है कि पहले क्या करना। पहले हमें पूजा करना, पहले हमें माला फेरनी, पहले हमें उपवास करना, पहले हमें दान देना, क्या करना है पहले क्या करना है। सबसे पहले दुख दूर करने के कारण भूत जो बात है उसमें अपना और पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। यदि अपना और पर का ज्ञान नहीं हो तो अपने को पहचाने बिना अपना दुख कैसे दूर करे। जब अपना ज्ञान ही अपने को नहीं है और पर का ज्ञान कैसा है, पर क्या चीज है, पर का स्थान क्या, मेरा स्वरूप क्या है, पर का स्वरूप क्या है, ऐसा नहीं हुए, अपने का एक दूसरे की पहचान नहीं हुए तो दुख कैसे होता है और सुख कैसे होता है, इसका कोई इलाज मिलेगा नहीं, दुख दूर करने का कोई उपाय नहीं मिलेगा। अथवा अपने को और पर को एक जानकर अपना दुख दर्द दूर करने के अर्थ पर का उपचार करें तो अपना दुख दूर कैसे हो। अब क्या कहते हैं कि मैं हूं वो दूसरा नहीं, दूसरा कोई पदार्थ है सो मैं नहीं। अपना और पर का अर्थ क्या हुआ कि दोनों अलग अलग पदार्थ हैं। अभी तक क्या हो रहा है कि अपने को और पर को एक जानकर अपना दुख दूर करने के अर्थ उपचार उपाय करता है, उपचार करता है मैंने उपाय करता है। अनादि से अपना भिन्न चैतन्यमय आत्मा का ज्ञान नहीं है इसलिए पर के साथ एक पणा मान करके, पर को और अपने को एक जान करके फिर दुख दूर करने का उपाय करता है। कैसे दुख दूर होगा कि इस उपाय से तो कभी होगा नहीं। पर मैंने नजदीक से ले ले तो शरीर है, शरीर पर है तो शरीर से मैं एक हूँ, शरीर रूप हूँ ऐसा जान लिया है, शरीर की असाता के दुख को आत्मा का दुख जाना है, शरीर की प्रतिकूलताओं का आत्मा का दुख जाना है तो इसलिए शरीर को ठीक रखना चाहता है और बाहर की अनुकूलताएं मिलाना जुटाना चाहता है तो उससे तो दुख दूर होता नहीं है। ये प्रत्यक्ष तौर से देखा जाता है कि जो शरीर से तंदुरुस्त है वो भी दुखी है और अनुकूलता आदि से साधन संपन्न है वो भी दुखी है, ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आता है। इसलिए दुख दूर करने का सही उपाय वो नहीं है, ये अनुभव सिद्ध है। तो ऐसे उपचार करे तो अपना दुख दूर कैसे हो, अथवा अपने से पर भिन्न है परंतु यह पर में अहंकार ममकार करें तो उससे दुख ही होता है। शरीर कुटुंब परिवार जितने भी पूर्व कर्म के उदय से जो भी संयोग है वियोग होता है उसमें अपना अपना करता है, अपना अपन करता है, अहंकार ममकार मैंने क्या कि अपना अस्तित्व उसमें अनुभव करता है, ये मेरा है, मैं उनका हूँ। इससे ही तो दुख होता है, यही तो दुख का कारण है। ये तो बिल्कुल स्थूल समझ में आवे ऐसी बात है। सूक्ष्म तौर से तो वृत्ति बाहर में जाती है, यही दुख का कारण है। जितने अनुपात में, जितने अंश में वृत्ति बाहर जाती है, वही दुख को उत्पन्न करती है। और वृत्ति अंतर्मुख हो जाए, स्वरूप में समा जाए, तो आत्म शांति का अनुभव होवे, उसमें दुख होवे नहीं। आ सूक्ष्म से सूक्ष्म में वो बात है उसमें। और वृत्ति जब बाहर जाती है तो फिर अनेक पदार्थ जो पूर्व कर्म के भाग्य कहते हैं सादी भाषा में, संसार में भाग्यवशात जो भी संयोग है उसमें ममत्व करता है, शरीर से लेकर जो भी संयोग है। क्योंकि संयोग इसलिए कहा कि जो वियोग सहित तो होते हैं उनको संयोग कहने में आता है। शरीर का भी वियोग होगा और दूसरे दूसरे सचेत अचेत, सचेत अचेत मिश्र सभी संयोग का वियोग हो जाएगा। संयोग अपना नहीं होने पर भी अपनापन उसमें होना, अनुभव करना, वही मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या आचरण रूप अधर्म है। वही अधर्म है और कोई अधर्म का दूसरा स्वरूप नहीं है। अहंकार ममकार करें तो उससे दुख ही होता है। अपना और पर का ज्ञान होने पर ही दुख दूर होता है। अपना और पर का भेद ज्ञान करे तो ही दुख दूर होता है। सुगानी जी ने पत्र लिखा है, अपने सेठी जी के जो पत्र लिखे ने उसमें वो बात लिया है। उसमें अपना परिणाम अपन करते हैं, अपन भोगते हैं, वो सब बात उसमें लिया है जो अपने समय सार में चलती है ना। आदरणीय सेठी जी साहब 1962 31 साल हुआ पत्र लिखा। अन्य लोगों के चरित्र निर्माण संबंधी आपका दृष्टिकोण, उसका पत्र में आया है, जो मुनि होते हैं वो अन्य लोगों का भी चरित्र निर्माण करते हैं, ऐसा उपदेश देते हैं कि अन्य लोगों का चरित्र निर्माण करते हैं, आपका दृष्टिकोण ख्याल में है, वो तो लोग मानते हैं। नीचे स्पष्टीकरण लिखा है, उस विषय पर मैंने स्पष्टीकरण लिखा है कि प्रथम तो मैं क्या हूं, मेरा स्वरूप कैसा है और मैं क्या कर सकता हूं, मेरा कार्य क्षेत्र की मर्यादा कितनी, इसका यथार्थ खुलासा होने पर या उसकी यथार्थ समझ होने पर कार्य की यथार्थ सीमा बंध सकेगी। कार्य क्षेत्र है, इसकी सीमा मर्यादा पदार्थ को जाने बिना हो सकेगी नहीं। तो कहते हैं कि मैं आत्मा हूं, क्या मैं मनुष्य नहीं। मनुष्य तो वो है कि जो आत्मा और शरीर का संयोग रूप एक पुतला है, उसको मनुष्य कहने में आता है। तो वो आत्मा वो बात नहीं है। इधर इधर तो मैं आत्मा हूँ, शरीर का संयोग होते हुए भी बिना शरीर वाला मैं आत्मा हूँ, और परिणाम का करना, मेरे परिणाम का करना और उसी परिणाम को भोगना, क्योंकि कर्ता भोक्ता साथ में ही होता है। क्या कहा, मेरे परिणाम को करना, यहाँ परिणाम में नहीं कर सकता, वो ध्रुव की बात नहीं है यहाँ। देखो मेरे परिणाम को करना और उसी परिणाम को भोगना, यही मात्र आत्मा की क्रिया है। इसके विपरीत, क्योंकि यहां दूसरे पदार्थ से भिन्न लेना है, इसके विपरीत स्वयं के जड़ शरीर आदि का और अन्य आत्मा का परिणाम मैं आत्मा नहीं कर सकता, शरीर का परिणाम भी मैं नहीं कर सकता और मैं अन्य आत्मा का परिणाम भी मैं नहीं कर सकता। अन्य आत्मा में जो भी परिवार में जितने भी आत्माएं हैं, या कारोबार में संबंध में उदय के काल में जिसके साथ भी प्रसंग हो, उनके परिणाम हम नहीं कर सकेंगे। चाहे कोई राग करे, चाहे कोई द्वेष करे, इनके परिणाम हम नहीं कर सकते। और जड़ में हमारा शरीर के परिणाम भी हम नहीं कर सकते। अगर शरीर के परिणाम हम कर सकते तो बीमारी कभी आ सकती नहीं, लेकिन वो भी हम कर सकते नहीं है। शरीर, जड़ शरीर वगैरह जितने भी जड़ पदार्थ हैं और अन्य आत्मा के परिणाम मैं आत्मा नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैंने मैं शरीरधारी नहीं, मैं आत्मा नहीं कर सकता, मैं मनुष्य नहीं कर सकता, वो बात नहीं, मैं आत्मा हूँ इसलिए मैं आत्मा का परिणाम कर सकता हूँ, दूसरे आत्मा का, दूसरे जड़ का परिणाम मैं नहीं कर सकता। कारण कि जड़ के परिणाम का कर्ता जड़ द्रव्य है और अन्य आत्मा के परिणाम का कर्ता वह आत्मा है। उत्पाद वे ध्रुव युक्तम साथ, वो सूत्र दिया इधर सूत्र दिया है, उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत। जड़ परमाणु भी सत है और आत्मा भी सत है, प्रत्येक परमाणु सत, प्रत्येक आत्मा सत, अपना उत्पाद वे वो करता है, दूसरा कर सकता नहीं। उक्त प्रकार का निर्णय, यथार्थ निर्णय हुए बाद, ये जो पंडित जी टोडरमल जी ने कहा वो बात लिया अभी, उक्त प्रकार का यथार्थ निर्णय हुए बाद पर परिणाम के किंचित भी कर्तापने का अभिप्राय टूट जाता है। मैं दूसरे का कार्य कर सकता हूँ, वो अभिप्राय टूट जाता है, अभिप्राय टूट जाता है। खा हमने तो अभिप्राय नहीं, मुख्य बात है, पहला अभिप्राय टूटे थे। पहले राग मिट जाएगा वो नहीं कहा, क्या ऐसा ज्ञान होने से वितराग हो जाएगा ऐसा नहीं कहा। पहले क्या होगा कि अपना जो विपरीत अभिप्राय है वो विपरीत अभिप्राय टूट जाएगा। विपरीत अभिप्राय टूटने से जो विपरीत परिणाम है वो अविपरीत स्वयं हो जाएगा। अगर अभिप्राय नहीं टूटा, मैं पर पदार्थ का कार्य कर सकता हूँ, शरीर का कार्य कर सकता हूँ, ऐसा अभिप्राय रख करके कितना भी त्याग वैराग यम नियम संयम आप कियो, कुछ हाथ में आने वाला नहीं है। मूल में अभिप्राय पहले पलटना चाहिए। पहले कर्तापने का अभिप्राय टूट जाता है। कैसे टूटता है, इसे क्या होता है उसमें, कि मैं पर का कुछ कर ही नहीं सकता। जब मैं पर का कुछ कर ही नहीं सकता तब पराश्रित परिणाम क्यों करूं, कि जो पराश्रित परिणाम स्वयं आकुलतामय है। यहां से लाइन चालू होती है, परिणमन की यथार्थ पद्धति यहां से चालू होती है, कि जब मैं दूसरे पदार्थ का परिणाम कर नहीं सकता तो उसके पर पदार्थ के आश्रित करने का परिणाम मैं क्यों करूं, कि जो आकुलता में और दुख में है। मेरा प्रयोजन तो दुख मिटाने का है, दुख प्राप्त करने का मेरा प्रयोजन नहीं है। और इन परिणामों को, जो परिणाम पर में लगते हैं वही परिणामों को स्वयं आश्रित कर लूं, वही परिणामों में अपने आत्मा में ले जाऊं, तो शुद्ध ज्ञान आनंद व शांति में परिणाम होंगे, बस यही सुख दुख का प्रयोजन सिद्ध होने का बहुत सीधा साधा उपाय है। तो ये परिणाम आत्मा में ले जाना यही धर्म है। अपने श्रद्धा ज्ञान चारित्र आदि आनंद गुण के परिणाम आत्मा में ले जाना यही धर्म है, और उसी परिणाम को बाहर में ले जाना वही अधर्म है। बस ये सीधी सादी धर्म की और अधर्म की परिभाषा है। इस दो पैराग्राफ में तो बराबर सिद्धांत को स्थापना कर दी है। अवकतना चौथा अंक में ही प्रवचन आवश्य मुझे नवसनो पर प्रवचन चौथा अंक में क्या कहा इधर अपना और पर का ज्ञान होने पर ही दुख दूर होता है। दुख दूर होने का ये जैन दर्शन का जिनेन्द्र निरूपित मूल सिद्धांत है। क्या ये पंडित जी साहब कहते हैं उतना नहीं लेना, इधर जो ज्ञानी कहते हैं वही जिनेन्द्र देव ने कहा है कि अपना और पर का ज्ञान होने पर ही दुख दूर होता है। किसी भी प्राणी को दुख दूर होगा तो अपना और पर का भेद ज्ञान होने से ही होगा, दूसरा कोई भी उपाय से नहीं होगा। तथा अपना और पर का ज्ञान जीव अजीव का ज्ञान होने पर ही होता है। अपना और पर का ज्ञान जीव अजीव का ज्ञान होने पर ही होता है, क्योंकि आप स्वयं जीव है और शरीर आदिक अजीव है। दश वैकालिक में इतना तो लिया है, मूल बात तो थोड़ी रह गई है ना कि जो जीव जो मुनि जीव का स्वरूप नहीं जानता और अजीव का स्वरूप नहीं जानता वो संयम को कैसे जाने। जिसको जीव अजीव का भेद ज्ञान नहीं, यथार्थ श्रद्धा नहीं, वो चारित्र कैसे पालेगा? पालेगा तो नहीं, वो संयम को जानेगा भी नहीं, वो संयम का भी ज्ञान उसको नहीं होगा। बाह्य संयम तो शरीर आश्रित होते हुए भी सिद्धांत ये स्थापित किया है। दसवीं कालिक में पहलू वचन छे हाँ सिमत जी लीधु से दसवीं कालिक में अध्ययन एक लीधु से मैं आत्मा हूँ अजीव हूँ और शरीर आदिक अजीव है। यदि लक्षणादि द्वारा जीव अजीव की पहचान हो, क्या बात हुई? पहले पहचान करने की बात की है और लक्षण से पहचान करने की बात किया कि यदि लक्षणादि द्वारा लक्षण और लक्षण पर की जितनी भी चर्चा हो विशेष विस्तार रूप से, इसके द्वारा जीव और अजीव की पहचान हो तो अपने और पर की भिन्नता भाषित हो। पहले भाव वासन लिया है, भाषित हो पहचान हो तो भिन्नता का भाव वासन होवे। इसलिए जीव अजीव को जानना, इसलिए जीव का स्वरूप और अजीव का स्वरूप जानना, मैंने शास्त्र पढ़कर जानना ऐसी बात नहीं। क्या कहा? लक्षण आदि द्वारा जानना ऐसा कहा। अपन तो वो भी शास्त्र में ले लेते, जीव का लक्षण ज्ञान, जीव का लक्षण चेतना, अजीव का लक्षण रूप रस गंध, पुद्गल का लक्षण रूप रस गंध वर्ण, ऐसा रटन करना वो बात इधर नहीं है, पहचान करने की बात है। जैसे कोई शक्कर है, अनाज है, गुड़ है, हाथ में लेकर वानगी कहते ना उसको, हिंदी में भी वानगी कहते हैं, वानगी लेकर के सैंपल लेकर के देखते हैं, कोई इसकी किताब नहीं पढ़ते। क्या शक्कर की किताब पढ़ ले, गेहूं की किताब पढ़ ले, चावल की किताब पढ़ ले, ऐसा करते हैं, उसकी वानगी को देखते हैं। ऐसे हम किताब पढ़ लेते हैं, वानगी को नहीं देखे तो पहचान होगी नहीं। ज्ञान है सो आत्मा का सैंपल है, वानगी है, उसके द्वारा जीव का स्वरूप को पहचान करना और जीव जीव को भिन्न जानना, अथवा जीव जीव का ज्ञान होने पर जिन पदार्थों के अन्यथा श्रद्धान से दुख होता था, उनका यथार्थ ज्ञान होने से दुख दूर होता है। इसलिए जीव जीव को जानना, क्या जीव अजीव का ज्ञान होने पर पदार्थों का अन्यथा श्रद्धान से दुख होता था वो मिट जाएगा, एम कैसे? क्या ज्ञान होने पर श्रद्धान जो उल्टा श्रद्धान है वो छूट जाएगा? सही ज्ञान मिथ्या श्रद्धान को मिटाने के लिए समर्थ है। वो बात आई इधर, क्या बात आई फिर से? कि जीव अजीव का सही ज्ञान होने पर जिन पदार्थों के अन्यथा श्रद्धान से दुख होता था, उनका यथार्थ ज्ञान होने से दुख दूर होता है। तो सही ज्ञान होने पर जो मिथ्या श्रद्धान दुख का कारण थी, वही यथार्थ ज्ञान से ये श्रद्धा भी पलट जाएगी और दुख भी दूर हो जाएगा, दोनों काम एक साथ हो जाएगा। श्रद्धा भी सही हो जाएगी और दुख भी मिट जाएगा। इसलिए जीव जीव का जानना, पहले सबसे पहले जीव जीव का जानना, जीव को जाने नहीं, अजीव को जाने नहीं। और कुछ भी धर्म के क्षेत्र में कुछ भी कार्य करें तो इससे कोई दुख दूर होने वाला नहीं है, या धर्म भी होने वाला नहीं है, क्योंकि परिणाम आत्मा में नहीं आएंगे। जो भी बाहर धर्म के क्षेत्र में कार्य करते हैं उसमें भी परिणाम तो बाहर जाते हैं, उसमें शांति होती नहीं है, थक जाते हैं। जो भी परिणाम बाहर जाते हैं उसमें क्या होता है, अशांति है, इसलिए थक जाते हैं। पूजा करते भी थक जाएंगे, स्वाध्याय करते भी थक जाएंगे, भक्ति करते भी थक जाएंगे, चिंतन मनन करते भी थक जाएंगे, क्योंकि ये परिणाम बाह्य परिणाम है। इसलिए पहले जीव जीव को जानना तथा दुख का कारण तो कर्म बंधन है, उसका कारण मिथ्यात्व आदि का आश्रव है, यदि इनको न पहचाने, इनको दुख का मूल कारण न जाने तो इनका अभाव कैसे करें? अब देखो दूसरा दो तत्व लिया है, पहले जीव जीव की बात लिया, अब आगे चलते हैं पंडित जी, कि ये दुख का कारण कर्म बंध है और कर्म बंध का कारण आश्रव है, दो तत्व दूसरा लिया है उसमें। जीवादिक को जानना ने तो आदिक में दूसरे दो तत्व की बात चालू कर दिया इधर, कि तुम बंधा हुआ है, भूख लगती है, त्रिशा लगती है, नींद आती है, तेरी उसमें कुछ चलती नहीं है, क्योंकि पूर्व से निबंधन किए हुए हैं सब। तो दुख का कारण तो प्रत्यक्ष बंधन है, तू बंध में जकड़ा हुआ है, यही तेरे दुख का कारण है, और ये बंध का कारण आश्रव है। देखो कहाँ जाते हैं, मूल में जाते हैं, इसके मूल में दुख का कारण बंधन, बंधन का कारण आश्रव, ऐसे दुख के मूल में जाता है कि दुख तो फलित हुआ है, दुख तो फल रूप आया है, इसका कारण क्या, कारण का कारण क्या, वहां तक पहुंचो। इसको मिटा दो, कारण मिटा दोगे तो कार्य मिट जाएगा। ये जैन दर्शन की श्रृंखला है, कार्य कारण की श्रृंखला है। और मूल से भवरोग या दुख रोग मिटाने का उपाय जिनागम में दिया है, लिखा है। क्या कहा कि दुख का कारण तो कर्म बंधन है और उसका कारण मिथ्यात्वादिक आश्रव है। यदि इनको न पहचाने, इनको दुख का मूल कारण न जाने, इतने कर्म बंधन और आश्रव, बंध और आश्रव तत्वों को भी न जाने न पहचाने, तो दुख का मूल कारण न जाने तो इनका अभाव कैसे करें। बुखार तो आया, लेकिन बुखार आने का कारण क्या? क्या गर्मी से गर्मी लग गई तो बुखार आया, या सर्दी लग गई तो बुखार आया? क्या हुआ? बुखार आया वो तो एक शरीर की उष्ण अवस्था है। उष्ण अवस्था में क्या करना कि उसके तो बहुत से कारण, जो भी कारण है उस कारण को ठीक नहीं करे तो कार्य ठीक होने वाला नहीं है। जैसे किसी को सर्दी से बुखार आया, पर कारण तो सर्दी है, और शरीर हो गया उष्ण, और फिर उसको ठंडाई करे है, अरे डबल निमोनिया हो जाए, नहीं मिटे क्या? सर्दी से तो बुखार आया है, और बर्फ की बर्फ को घिसने लग जाए है? क्या हो जाएगा? उसको तो निमोनिया हो जाएगा। ऐसे तो बुखार, ऐसे तो दुख मिटाया जाता नहीं है। दुख का मूल कारण न जाने तो इनका अभाव कैसे करे, और इनका अभाव नहीं करे तो कर्म बंधन कैसे नहीं हो। दुख का अभाव नहीं करे तो वो दुखित परिणाम में नया कर्म बांधेगा, आकुलित भाव में नए नए कर्म बंधन होगा। इसलिए दुख ही होता है, ज्ञान बिना न दुख का अभाव होगा न अधर्म का अभाव होगा। अथवा मिथ्यात्वादिक भाव है सो दुखमय है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र आदि में तीनों ले लेना, ये सभी परिणाम के दोष के यही कारण है। वो दुखमय है, वो स्वयं दुखमय है, यदि उन्हें ज्यों का त्यों नहीं जाने, ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र का स्वरूप ज्यों का त्यों नहीं जाने तो उनका अभाव नहीं कर सकेंगे, तब दुख ही रहेगा। इसलिए आश्रव को जानना, आश्रव को जानना, आश्रव को जान करके आश्रव को छोड़ना, वो अनिष्ट कर्म बंधन का कारण जान करके छोड़ देना। यदि आश्रव का स्वरूप नहीं जानेगा तो आश्रव की भावना करेगा जीव, ये भी प्राय में लिया कि नहीं लिया, आश्रव की भावना हो जाएगी, मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ज्ञान होगा, मैं स्वाध्याय करूंगा, शास्त्र पढ़ूंगा, सुनूंगा तो मैंने ज्ञान, मुझे ज्ञान हो जाएगा। तो ऐसा राग है वो आश्रव है, और राग करूंगा तो मेरा कार्य हो जाएगा, वो आश्रव की भावना हो गई। हाँ, नानावर्णी की पूजा करना कि नहीं करना, नानावर्णी कौन है? वो नानावर्णी कोई देवता है, कोई देव है क्या? पूजा तो अपने देव की करते हैं, जिन देव की करते हैं। किसकी पूजा करें? जिन देव की। नानावर्णी कोई जिन देव है क्या? हाँ, क्यों पूजा करें इसकी? पूजा तो देव की, गुरु की और शास्त्र की जाती है। तो ज्ञानावरणी कोई देव नहीं, कोई गुरु नहीं और कोई शास्त्र भी नहीं है। लोग तो सर्प की भी पूजा करते हैं और ये पीपल की भी पूजा करते हैं और गाय की भी पूजा करते हैं। सर्प और गाय तो त्रियंश है और पीपल आदि वृक्ष तो एकेंद्री है, स्थावर काय। नहीं समझे तो ऐसा हो जाएगा, जड़ की पूजा हो जाएगी। ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या श्रद्धा का फल आया, कहाँ चला गया कि जड़ की पूजा करने को चला गया, तिरंज की पूजा करने को चला जाएगा। जड़ की और तिरंज की तो पूजा नहीं करना, लेकिन कुदेव की पूजा भी नहीं करना। एक वितराग देव, सतगुरु और सत धर्म वही पूजनीय है और कोई पूजनीय नहीं है। ऐसा दृढ़ श्रद्धा रखना। हाँ आगे लेंगे वो मोक्षमार्ग प्रकाशक में तो क्रांतिकारी ग्रंथ है। ये ग्रंथ ही क्रांतिकारी है। सब प्रकार की उल्टी मान्यता विपरीत श्रद्धा को बराबर ठपका रहा है। क्या बराबर का कहा है? बहुत बड़ा काम हो जाता है। अरे मुमुक्षुओं के लिए तो बहुत सी बातें मिलती है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम ही उन्होंने ऐसा दिया है। जैसे कोई महान आचार्य ग्रंथ लिखने को बैठे ऐसे उन्होंने ग्रंथ बनाया। उनके पास तो ज्ञान था, लेकिन इनके काल के और इन भविष्य के मुमुक्षु जीवों का उतना सद्भाग्य नहीं था। एक दुर्भाग्य रहा कि ये ग्रंथ पूरा नहीं हुआ, उसका ज्ञान अपने आत्मा में रह गया, वो अपना ज्ञान लेकर के स्वर्ग में चले गए, ऐसा हुआ। तथा समस्त दुख का कारण कर्म बंधन है, ये बात लेंगे बार बार। समस्त कर्म का कारण कर्म बंधन है, यदि उसे न जाने तो उससे मुक्त होने का उपाय नहीं करे। मुक्त होने का उपाय तो नहीं करे, नया बंद करने का उपाय करेगा। क्योंकि मिथ्या श्रद्धा में वो तो जाना है कि पाप से तो पाप कर्म बंधता है और पुण्य से कर्म बंधन होता है, ऐसा नहीं जान करके धर्म होता है ऐसा जानता है तो वो बंधन बढ़ाएगा। बंधन को धर्म मान करके बंधन को बढ़ाएगा। यदि उसे न जाने तो उससे मुक्त होने का उपाय नहीं करे, तब उसके निमित्त से दुखी हो, इसलिए बंध को भी जानना, बंध का स्वरूप कैसे उसको भी जानना के आत्मा को बंध कैसे कैसे होता है, क्या किस किस प्रकार के होते हैं, किस परिणाम से होते हैं। हाँ तो आश्रम ने बंध चार तत्व भी लिया। तथा आश्रम का अभाव करना सो संवर है, ये पांचवा आया। बंध का कारण आश्रम है पर आश्रम मिटाने का उपाय संवर है, और संवर का उत्कृष्ट उपाय भेद ज्ञान है। आता है समय सार संवर अधिकार। संवर का उत्कृष्ट उपाय भेद ज्ञान का निरूपण करते हैं। आश्रव का अभाव करना सो संवर है, उसका स्वरूप न जाने, संवर का स्वरूप भी न जाने तो उसमें प्रवर्तन नहीं करे, तो संवर भाव में प्रवृत्ति नहीं करेंगे, तब आश्रव ही रहे, उससे वर्तमान तथा आगामी दुख ही होता है। है ना, इससे तो वर्तमान में भी दुख है और भविष्य में भी दुख होने वाला है। अभी तक का तो प्रकरण जो संसार दुख का था वो तो अनुभव है सबका, इसलिए ले लिया। अभी जब ये ध्यान से पढ़ने की चीज आई है, वो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है, वो तात्विक बात है,
मूल बात
धर्म कैसे होता है उसकी तात्विक बात है, और उसका निवारण रूप धर्म कैसे होगा उसी की भी तात्विक बात है। तो अभी तत्व का प्रकरण चालू हुआ है, क्या बराबर तत्व का प्रकरण चालू किया है चौथे अधिकार में। इसलिए संवर को भी जानना तथा कथनचित किंचित कर्मबंध का अभाव करना तथा जितना हो सके इतना, किंचित मैंने जितना हो सके उतना कर्मबंध का अभाव करना, उसी का नाम निर्जरा है। आश्रव का प्रतिपक्ष भूत संवर है, और बंध छोड़ने के लिए किंचित बंध छूटना वो निर्जरा है, और पूरा बंध छूटना उसका नाम मोक्ष है। ये ऐसे सात तत्व पहले ले लिया, पछी वो तो पुण्य पाप तो आश्रव का भेद है, वैसे नौ में ले जाएंगे। तो कथनचित किंचित कर्म बंध का आश्रव करना उसका नाम निर्जरा है, ये छह हुआ। यदि उसे न जाने तो उसकी प्रवृत्ति का उद्यम नहीं हो, तब सर्वथा बंध ही रहे, जिससे दुख ही होता है, और कर्म बंधन से तो दुख ही होता है, जीव पराधीन हो जाता है, और पराधीन समान कोई जगत में दुख नहीं है। ये बीमारी में पराधीन हो जाता है आदमी, वृद्धावस्था में पराधीन हो जाता है, तो बंधन में आता है, तो अपने अपने परिणाम विचार के अनुसार अपना कार्य नहीं कर सकता, तो बंधन का दुख महसूस करता है। इसलिए निर्जरा को जानना, निर्जरा को भी जानना, आश्रव बंधन को भी जानना, आश्रव को भी जानना, संवर को भी जानना, और निर्जरा को भी जानना, तथा सर्वथा सर्व कर्म बंधन का अभाव होना उसका नाम मोक्ष है। समस्त कर्म क्षय करण, मोक्ष किसको कहते हैं, समस्त कर्म का क्षय हो जाए, क्षय लक्षण, उसी का नाम मोक्ष है। यदि उसे नहीं पहचाने, मोक्ष को भी नहीं पहचाने, तो उसका उपाय नहीं करे, तब संसार में कर्म बंधन से उत्पन्न दुखों को ही सहे, ऐसा तत्वों की पहचान नहीं करेगा, तब संसार में कर्म बंधन से उत्पन्न दुखों को ही सहे, उसका सहन करना पड़ेगा। इसके इसलिए मोक्ष को भी जानना। अभी तो यहाँ मोक्ष नहीं होता है, मोक्ष को क्यों जाने, वो बात नहीं है, मोक्ष को भी जानना। इस प्रकार जीवादि सात तत्व जानना, सातों तत्व का यथार्थ ज्ञान करना, उस ज्ञान करने में कौन हेय है, कौन उपाधि है, ये प्रयोजन का विषय अब लेंगे अभी। जाने बिना हेय उपाधि हो सकता नहीं है, जाने बिना हेय उपाधि हो सकते नहीं है। सहेली तो बहुत तरह की आती है, जाने बिना उपाधि तत्व उपाधि नहीं रहता, और उपाधि को उपाधि तत्व के रूप में ही जानना, ऐसा भी कहेंगे, प्रश्न आया है ना, ध्येय को अग्नि रूप जाने तो क्या है, ऐसा बात आया ना। तो जाने बिना तो ध्येय निश्चित नहीं होता, और ध्येय होता तो ध्येय इस तरह जानना कि यही मेरा ध्येय है, दूसरा मेरा ध्येय नहीं है, उसी तरह वो ध्येय है वही मेरा अग्नि, उस प्रकार का अग्नि है, दूसरे प्रकार का अग्नि नहीं है। शैली तो अनेक प्रकार से आती है शास्त्र में, जहाँ जो कहने का अभिप्राय हो आत्महित का, उसी तरह वहां आत्महित का साधन करना। यहाँ ऐसा क्यों कहा, वहां ऐसा क्यों कहा, ऐसा फालतू तर्क उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आत्महित में वो काम में आता है कि नहीं आता है, किस तरह से आता है, वही समझने की कार्य पद्धति होनी चाहिए। इस प्रकार जीवादि सात तत्व जानना तथा शास्त्र आदि द्वारा कदाचित उन्हें जाने, परंतु ऐसे ही है ऐसी प्रतीत नाई, तो जानने से क्या हो। अब पद्धति लिया, जानना और जान करके उसकी प्रतीति भी करना। क्या होता है कि जानते तो हैं बहुत लेकिन प्रतीति नहीं करते, वो जानना बेकार जाता है, वो जानना कोई काम में नहीं आता है। इसलिए पढ़ाई तो कर लेते हैं फिर भी वो पढ़ाई काम में नहीं आती। हाँ, इंफॉर्मेशन ब्यूरो माहिती खातो, वो तो कुतूहल की पुष्टि किया, जो आत्मा की अरुचि रूप कुतूहल वृत्ति है उसको पोषण दिया। उसमें आत्म साधन कुछ होने वाला नहीं है, आत्मरुचि नहीं होगी। यहाँ तक रखें, आगे लेंगे कल।
देव मंदिर भगवान।